एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे लेखक पर बात करने जा रहे हैं जिन्होंने उपनगरीय जीवन की चमक के पीछे की उदासी, वो नैतिक दुविधाएं, उनको बड़ी गहराई से दिखाया।
जॉन चीवर।
जी हाँ, जॉन चीवर। उन्हें उपनगरों का चेखव भी कहा जाता है ना?
बिल्कुल, और ये नाम उन्हें बहुत सूट भी करता है।
हाँ, लेकिन आज का हमारा फोकस थोड़ा अलग है। हम उनके जाने पहचाने उपनगरीय माहौल से जरा हटकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में जा रहे हैं।
उनके 1977 के उपन्यास फॉल्कनर के जरिए।
हाँ, फाल्कनर।
ये चीवर के लेखन में आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर है। ये उपन्यास हमें ले जाता है फॉल्कनर स्टेट पेनिटेंशरी की दीवारों के अंदर। सिंग सिंग जैसा माहौल।
अच्छा,
और चीवर ने खुद भी सिंग सिंग में पढ़ाया था, तो शायद उनके अपने जीवन के संघर्ष रहे होंगे। शराबखोरी, अपनी पहचान से जूझना और कैद के अनुभव, वो शाब्दिक हों या लाक्षणिक, वो सब कहीं ना कहीं इस उपन्यास में उतर आए हैं।
सही कहा, और शायद यही बात इसे इतना इतना शक्तिशाली बनाती है। बाहर से देखें तो लगता है कि ये उनके बाकी काम से अलग है, पर असल में ये उन्हीं विषयों का, प्यार, पहचान, स्वतंत्रता, अपराध बोध, इनका शायद सबसे गहरा, सबसे कच्चा अन्वेषण है।
बिल्कुल, समीक्षकों ने इसे हाथों हाथ लिया था, एक मास्टरपीस माना गया।
तो आज हम इसी अंधेरी दुनिया में झांकेंगे। इज़ीकियल फेरागट नाम के कैदी की कैद, उसकी पीड़ा और उसकी लगभग नामुमकिन सी लगने वाली मुक्ति की यात्रा को समझेंगे। क्या वाकई इतने अंधेरे में भी कोई उम्मीद हो सकती है? चलिए पता लगाते हैं।
तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है इज़ीकियल फेरागट, करीब 48 साल का, एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एक सम्मानित पुराने पैसे वाले खानदान से भी है।
सुनने में तो एकदम परफेक्ट लाइफ लगती है।
हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है, लेकिन इस चमकदार सतह के नीचे है नशे की लत का गहरा अंधेरा, और इसी अंधेरे में उसने एक ऐसा अपराध किया है जिसे समाज, मतलब सबसे घिनौना मानता है।
भ्रातृहत्या, अपने ही भाई की हत्या।
हाँ, उसने अपने भाई एबिन की हत्या कर दी।
और जैसा आपने कहा, ये कोई अचानक गुस्से में हुआ हादसा नहीं था, है ना? उपन्यास इशारा करता है कि ये सालों से दबा हुआ गुस्सा, ईर्ष्या और नशे की धुंध, इन सब का मिलाजुला एक जहरीला नतीजा था।
बिल्कुल, फेरागट का किरदार शुरू से ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक बुद्धिजीवी, संवेदनशील आदमी जो अपनी ही कमजोरियों का शिकार बन गया। उसका वो खानदान, उसका प्रोफेसर होना, ये सब जैसे बाहरी कवच थे जो अब एक झटके में टूट गए हैं। और उपन्यास शुरू होता है फेरागट के फॉल्कनर जेल में दाखिल होने से, वो पल जब उसकी सारी पुरानी पहचान, वो सब छीन ली जाती है। अब वो प्रोफेसर फेरागट नहीं है, वो खानदानी फेरागट नहीं है, वो है सिर्फ एक नंबर, 7345083 2।
सोचकर ही अजीब लगता है, इंसान का पूरा वजूद एक नंबर में सिमट जाए।
और ये तो बस शुरुआत है, इसके फौरन बाद उसे गुजरना पड़ता है हेरोइन छोड़ने की भयानक पीड़ा से, शारीरिक और मानसिक। चीवर ने इसे इतनी सच्चाई से लिखा है, पढ़ते हुए वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उल्टियां, मति भ्रम, वो असहनीय दर्द,
ये सिर्फ नशा छोड़ना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है ना?
हाँ, ये एक तरह से उसका पूरा ढांचा ही तोड़ देता है। उसका वो बौद्धिक अहंकार, वो सामाजिक नकाब, सब उतर जाता है। वो एकदम कच्चा, कमजोर, अपनी असलियत में सामने आ जाता है।
जैसे उसका पुराना मैं मर गया हो, वो प्रोफेसर वाला रॉब, वो दिखावा, सब खत्म।
बिल्कुल, अब वो बिल्कुल वल्नरेबल है, एक नए सिरे से शुरुआत करने को मजबूर। कई लोग इसे एक किस्म की प्रतीकात्मक मौत भी कहते हैं, जहां से उसके बदलाव का, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सफर शुरू होता है।
और ये सब हो रहा है फॉल्कनर जेल में, जो कोई सुधार गृह तो बिल्कुल नहीं लगता। चीवर उसे एक सड़ती हुई क्रूर जगह की तरह दिखाते हैं। लोहे की सलाखें, कंक्रीट के फर्श, हर तरफ जैसे हिंसा और निराशा की गंध फैली हो।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये बाहरी दुनिया का ही एक छोटा, शायद ज्यादा ईमानदार और कहीं ज्यादा क्रूर रूप हो, एक नर्क का मिनिएटर।
हर कोने में हताशा है, अमानवीयता है। कैदी जैसे अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों तक सिमट गए हैं। माहौल इतना दम घोटू है कि सवाल उठता है, क्या ऐसी जगह पर मुक्ति संभव है? क्या कोई इंसान जो इतना टूट चुका हो यहां से आजादी का कोई रास्ता खोज सकता है?
और यही मेरे ख्याल से उपन्यास का केंद्रीय प्रश्न बन जाता है।
फैरागट को सेल ब्लॉक F में रखा जाता है। अब उसे जेल के कायदे कानून सीखने हैं, वो भी जो कहीं लिखे नहीं है। वो अपने साथी कैदियों को देखता है, उनके अजीबोगरीब बर्ताव को समझने की कोशिश करता है।
जिसे वो किस्सा है उस कैदी का जिसने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसके तोते को दाना नहीं डाला था।
हाँ, या वो दूसरा जो अपनी माँ के लिए लगातार रोता रहता है। ये छोटी छोटी झलकियाँ जेल की उस अजीब, जटिल और कई बार बेतुकी दुनिया को दिखाती हैं।
इन सब के बीच फैरागट की यात्रा में कुछ अहम मोड़ आते हैं, खासकर उसके रिश्तों के जरिए। एक बड़ा झटका तब लगता है जब उसकी पत्नी मार्शिया उससे मिलने जेल आती है।
आप उम्मीद करेंगे कि शायद वो कुछ सहानुभूति दिखाएगी, कोई सहारा देगी, लेकिन होता है ठीक उल्टा।
बिल्कुल, मार्शिया जैसे अपनी पूरी नफरत उस पर उड़ेल देती है। वो उसे बताती है कि वो उसे छोड़ रही है, और इससे भी ज्यादा क्रूर बात, वो उनके बेटे को थेरेपिस्ट के पास ले गई है ताकि उसके मन से बाप के लिए जो थोड़ा बहुत प्यार बचा हो उसे भी निकलवा सके।
ये तो भावनात्मक क्रूरता की हद है।
दिल तोड़ने वाला है सुनना, लेकिन अजीब बात यह है कि मार्शिया का ये रवैया, ये नफरत फैरागट के लिए एक तरह से एक मुक्ति का पल भी बन जाता है।
मुक्ति का पल? कैसे?
क्योंकि ये उसके पुराने झूठे दिखावे वाले जीवन से उसका आखिरी सार्थक रिश्ता भी तोड़ जाता है। अब उस दुनिया से पूरी तरह कट चुका है जहां प्यार भी शायद एक समझौता ही था, अब कोई बंधन नहीं रहा।
तो शायद इसी खालीपन में एक नए, बिल्कुल अप्रत्याशित रिश्ते की गुंजाइश बनती है।
इसकी मुलाकात होती है जोड़ी से।
हाँ, जोड़ी, एक युवा, आकर्षक लेकिन साथ ही चालाक और शायद थोड़ा खतरनाक भी, साथ ही कैदी,
और उनके बीच एक गहरा जिस्मानी और भावनात्मक रिश्ता पनपता है
जो मार्शिया के साथ उसके ठंडे, कर्तव्यनिष्ठ रिश्ते से बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल, जोड़ी के साथ उसका रिश्ता कच्चा है, उसमें खतरा है, पर उसमें एक अजीब सी सच्चाई भी है। चीवर इसे हिंसक और कायर प्रेम कहते हैं।
हिंसक और कायर?
हाँ, शायद इसलिए कि ये जरूरत, अकेलेपन और शायद सचमुच के लगाव का एक बहुत ही उलझावा मिश्रण है। ये रिश्ता फैरागट को हिलाकर रख देता है, उसकी सोई हुई भावनाओं को जगाता है, भले ही इसका अंत भी भरोसे के टूटने में ही होता है।
तो हम कह सकते हैं कि जोड़ी का किरदार, भले वो खुद कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, फैरागट के लिए एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम करता है।
हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो उसे उसकी दबी हुई इंसानियत का एहसास कराता है, प्यार करने और प्यार पाने की उसकी जरूरत को जगाता है, भले ही वो जेल की इस क्रूर दुनिया में ही क्यों ना हो।
जोड़ी उसे आईना दिखाता है उसकी अपनी कमजोरियों और इच्छाओं का।
बिल्कुल, और सिर्फ जोड़ी ही नहीं, दूसरे कैदी भी हैं जो इस दुनिया की जटिलता दिखाते हैं, जैसे वो चिकन नंबर 2 जो बाहर से हिंसक लगता है पर अंदर से समझदार है, या द ककोल्ड जो अपनी बेवफा पत्नी के लिए अजीब तरह से समर्पित है। ये सब दिखाते हैं कि इंसान कितने पेचीदा होते हैं, अच्छे बुरे के खांचों से कहीं आगे।
और ये सब हमें फिर से उपन्यास के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, कैद और आज़ादी, इनका मतलब क्या है? फॉल्कनर की शारीरिक कैद तो साफ है, सलाखें, दीवारें, लेकिन चीवर दिखाते हैं कि फैरागट तो जेल आने से पहले भी कई तरह की कैदों में था।
हाँ, नशे की कैद, एक बेजान शादी की कैद, अपने सोशल क्लास की उम्मीदों की कैद, और शायद सबसे बड़ी अपने भाई के प्रति वो अपराध बोध और गुस्से की कैद।
सही बात है, और जेल की ये दीवारें शायद उन अंदरूनी दीवारों को और ज्यादा उजागर कर देती हैं। उपन्यास धीरे धीरे ये दिखाता है कि असली आज़ादी शायद बाहर नहीं बल्कि अंदर है, मन की आज़ादी।
इसका एक दिलचस्प उदाहरण तब मिलता है जब जेल में कैथोलिक कार्डिनल का दौरा होता है। बड़ा तामझाम, भव्य आयोजन, लेकिन सब कुछ एक खोखला तमाशा लगता है, जेल का अपना थिएटर।
और इसी तमाशे के बीच चालाक जोड़ी भाग निकलता है।
हाँ, कभी कहानी आती है कि वो वेदी के लड़के के भेष में भागा, कभी कि वो किसी कालीन में छुपकर निकल गया, जो भी हो वो भाग जाता है।
फैरागट के लिए एक और झटका, भरोसे का टूटना, लेकिन शायद ये भी जरूरी था। ये उसे सिखाता है कि अपनी मुक्ति के लिए वो किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता। जोड़ी का जाना उसे अकेला कर देता है, लेकिन शायद इसी अकेलेपन में उसे अपनी ताकत का एहसास होता है, आत्मनिर्भरता का सबक।
और फिर जेल में दंगा भड़क उठता है, पूरी तरह अराजकता, हिंसा, कैदी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन इस हंगामे के बीच फैरागट, वो अजीब तरह से शांत है, लगभग उदासीन। हाँ, जैसे बाहर का ये शोर शराबा अब उसे छूता ही नहीं, उसका ध्यान अब इस बाहरी विद्रोह पर नहीं बल्कि अपनी निजी अंदरूनी मुक्ति की संभावना पर टिक गया है। ये दिखाता है कि वो कितना बदल चुका है, उसका फोकस अब अंदर की ओर है।
बिल्कुल, उसका अलगाव अब बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि जेल की उस सामूहिक हताशा से भी हो गया है, और यहीं से कहानी अपने सबसे नाटकीय और अविश्वसनीय मोड़ पर पहुंचती है, उसका पलायन।
हाँ, वो क्लाइमैक्स तो मतलब दिमाग में छप जाता है। द फार्ट नाम का एक बुजुर्ग कैदी है, उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है।
और अचानक एक हताश और दुस्साहसी बिल्कुल वाइल्ड आइडिया फैरेगेट के मन में आता है।
वो एक दूसरे कैदी की मदद लेता है, मरे हुए आदमी के कपड़े उतारकर उसे अपने बिस्तर पर लिटा देता है और खुद उस लाश को ले जाने वाले हरे रंग के बॉडी बैग में जिप बंद करके लेट जाता है।
यकीन करना मुश्किल है।
और गार्ड्स उसे मुर्दा समझकर जेल से बाहर ले जाते हैं और कहीं घास पर फेंक देते हैं।
उस बैग के अंदर का सफर, चीवर ने उसे जिस तरह लिखा है वो घुटन भरा डरावना है। अंधेरा, हवा की कमी, मौत की गंध, ये सिर्फ एक थैले में बंद होना नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, जैसे वो किसी गर्भ में वापस चला गया हो, या शायद कब्र में। मृत्यु और पुनर्जन्म का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है वो बैग।
और जब वो आखिरकार उस बैग को फाड़कर बाहर निकलता है, वो पल वाकई एक पुनर्जन्म जैसा लगता है।
बिल्कुल, वो जेल की वर्दी उतार फेंकता है, मरे हुए आदमी के मैले कुचाले कपड़े पहन लेता है और पास के एक बस स्टॉप की तरफ चल पड़ता है।
उपन्यास के आखिर में वो कौन है?
उसका कोई नाम नहीं बचा, कोई अतीत नहीं,
लेकिन वो आजाद है, और चीवर लिखते हैं वो आनंदित हो रहा है।
रिजॉइसिंग।
एक अद्भुत विरोधाभास, सब कुछ खोकर वो शायद पहली बार सचमुच कुछ पा रहा है, वो आजादी।
वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका चमत्कारी रूप से पुनर्जन्म हुआ था, वो आनंदित हो रहा था।
ये पंक्तियां वाकई गूंजती रहती हैं। हाँ, भविष्य अनिश्चित है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन शायद पहली बार वो जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं और अपराध बोध के बोझ से मुक्त है। तो चलिए अब थोड़ा रुककर उपन्यास के जो मूल विषय हैं और चीवर की शैली, उस पर और गौर करते हैं। हमने कैद और आज़ादी की बात की, जो शायद सबसे प्रमुख थीम है।
हाँ, और चीवर इसे कई परतों में दिखाते हैं, शारीरिक कैद बनाम मानसिक और भावनात्मक कैद, और ये विचार कि सच्ची स्वतंत्रता शायद बाहरी हालात से ज्यादा हमारे अंदरूनी नजरिए पर निर्भर करती है। फॉल्कनर की दीवारें टूटने से पहले फैरेगेट की अंदरूनी दीवारें टूटनी जरूरी थीं।
दूसरा अहम विषय है अनुग्रह और मुक्ति का, ग्रेस एंड रिडेम्पशन। लेकिन ये कोई पारंपरिक धार्मिक किस्म की मुक्ति नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। चीवर की दुनिया में कृपा या अनुग्रह अक्सर अजीब, अप्रत्याशित, यहां तक कि अपवित्र लगने वाले रास्तों से आता है, जैसे दो कैदियों के बीच का वो कच्चा प्यार, या एक हिंसक कैदी की अचानक दिखाई दयालुता, या फिर भागने की वो हताश योजना जो लाश के थैले से जुड़ी है।
मतलब उसे मुक्ति किसी पादरी के उपदेश से नहीं मिल रही है?
नहीं, उसे मिल रही है एक साथी कैदी के लिए महसूस किए गए प्यार से, या भागने की एक अचानक हताश योजना से। चीवर के लिए शायद असली कृपा ऐसी ही अप्रत्याशित जगहों पर मिलती है। ये प्रार्थना से अर्जित नहीं होती, बल्कि पीड़ा, प्रेम और खुद को आजाद करने के एक रैडिकल एक्ट से मिलती है।
तीसरा, प्रेम की भूमिका, लव एज ए ह्यूमनाइजिंग फोर्स। मार्शिया का रिश्ता ठंडा, कर्तव्य जैसा था। जोड़ी के साथ रिश्ता खतरनाक, अस्थिर, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी, एक गर्मी थी जिसने फैरागट को दोबारा इंसान होने का एहसास कराया।
हाँ, भले ही उसका अंत धोखे में हुआ, पर वो जरूरी था उसके बदलाव के लिए। ये दिखाता है कि कैसे सबसे अंधेरी जगहों पर भी मानवीय जुड़ाव की जरूरत और ताकत बनी रहती है। शायद जेल की क्रूरता के बीच यही प्यार, भले ही वह तथाकथित अनैतिक क्यों न हो, फैरागट को उसकी छीनी हुई इंसानियत वापस दिलाने वाली अकेली ताकत बचती है,
जो बाहरी दुनिया के सभ्य पर खोखले रिश्तों से कहीं ज्यादा सच्ची है।
बिल्कुल।
चौथा विषय है पहचान की तरलता, फ्लुइडिटी ऑफ आइडेंटिटी। फैरागट जेल में अपनी सारी पुरानी पहचानें खो देता है, प्रोफेसर, पति, पिता, यहाँ तक कि हत्यारा भी, और अंत में सब कुछ पीछे छोड़कर, नामहीन और अतीत रहित होकर, वो शायद पहली बार ऑथेंटिकली वो खुद बनता है।
जैसे चेवर कह रहे हो कि खुद को पाने के लिए कभी कभी सब कुछ खोना पड़ता है।
और पांचवा, समाज की आलोचना भी है इसमें, क्रिटिक ऑफ द सोशल ऑर्डर।
हाँ, बाहरी दुनिया, खासकर फैरागट का वो उच्च वर्ग, दिखावे और भावनात्मक ठंडक से भरा लगता है, जबकि जेल की क्रूरता में कम से कम एक कच्ची ईमानदारी तो है। फाल्कनर में लोगों को उनके कर्मों से आंका जाता है, उनके खानदान या रुतबे से नहीं। एक अजीब सा विरोधाभास है।
शैली की बात करें तो चीवर का गद्य कमाल का है, वो यथार्थवाद और काव्यात्मकता को जैसे मिला देते हैं।
हाँ, वो जेल की गंदगी, क्रूरता, निराशा को बिना किसी लाग लपेट के दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं निराशाजनक हालात में वो सुंदरता के क्षण भी ढूंढ लेते हैं। सलाखों वाली खिड़की से दिखता आसमान का टुकड़ा या पानी पर पड़ती रोशनी की कोई पुरानी याद। उनका गद्य आपको उस माहौल में खींच लेता है, आप उसे महसूस करते हैं।
और प्रतीक, उपन्यास प्रतीकों से भरा पड़ा है। फाल्कनर जेल खुद एक क्रूसिबल, एक परीक्षा की भट्टी की तरह है।
हाँ, जहाँ फैरागट का सोना तपाया जाता है। नशे की लत एक झूठे सहारे या पलायन का प्रतीक है। और वो बॉडी बैग, वो कब्र भी है और गर्भ भी, मौत का प्रतीक भी और पुनर्जन्म का भी। चीवर शब्दों से ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जो दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं।
फाल्कनर पढ़ना कोई आसान अनुभव नहीं है। ये आपको झंझोड़ता है, असहज करता है। जेल का जीवन, नशे की पीड़ा, मनोवैज्ञानिक उथल पथल का चित्रण इतना सच्चा है कि पाठक भी खुद को फैरागट के साथ उस सेल में कैद महसूस करने लगता है।
हाँ, पढ़ते हुए कई बार निराशा घेर लेती है, लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन उपन्यास का जो स्थायी प्रभाव है वो निराशा का नहीं, बल्कि एक हैरतअंगेज, मुश्किल से हासिल की गई उम्मीद का है।
बिल्कुल, वो आखिरी दृश्य, फेरेंगट का उस थैले से निकलना और आनंदित होना, वो आधुनिक साहित्य के सबसे यादगार और रूहानी तौर पर गूंजने वाले अंतों में से एक है।
ये पाठक को मानवीय जज्बे की ताकत पर, रेजिलियंस पर सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरह का रेचन कैथार्सिस होता है कि इतनी गहराई से गिरने के बाद भी उठना मुमकिन है।
और ये उपन्यास स्वतंत्रता, अपराध बोध, प्रेम, न्याय जैसी चीजों के बारे में हमारी बनी बनाई सोच को चुनौती देता है।
बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगियों में कौन सी अदृश्य जेलें बना लेते हैं। बुरे रिश्ते, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें, समाज के दिखावे वाले नकाब, ये पारंपरिक नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। क्या मुक्ति हमेशा तयशुदा रास्तों से ही मिलती है? क्या प्यार सिर्फ सही और नैतिक लगने वाले रिश्तों में ही हो सकता है?
और ये सवाल छूट जाता है, हम अपनी पुरानी खाल उतार फेंकने और एक नया जन्म पाने के लिए क्या कुछ करने को तैयार हैं?
हाँ, ये इस बात का सबूत है कि अंधेरे कितने भी गहरे क्यों ना हों, इंसान रोशनी की तरफ उठने का रास्ता खोज सकता है।
तो इस कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? शायद यही कि आज़ादी अक्सर उन जगहों पर मिलती है जहां हम उसे खोजने की सबसे कम उम्मीद करते हैं।
और ये कि मुक्ति, चाहे वो रूहानी हो या जज्बाती, अक्सर उन्हीं दीवारों के भीतर पनप सकती है जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।